ओम शांति। आज का हमारा स्वमान है, मैं आत्मा प्रेरणा स्वरूप हूं। हम सभी के बीच में आज ऐसा व्यक्तित्व उपस्थित है जो हजारों ही नहीं लाखों मानव आत्माओं के लिए अपने चरित्र के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा प्रेरणा स्वरूप बने हैं। हम सब आदरणीय भ्राता राजू भाई जी का एक हाथ की दिव्य ताली से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। बचपन से ही आप बाबा के बने। यूपी कानपुर के नजदीक के एक छोटे से गांव से आप हैं और लगभग 60 से भी अधिक वर्षों से आपने इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया है। दादियों के बहुत समीप रत्न है। विश्वासु, कार्यनिष्ठा, जिम्मेवारी उठाने की कला और सरल स्वभाव के कारण आप यज्ञ में सर्वप्रिय आत्मा हैं। कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हम सभी जो प्रतिदिन साकार मुरली में प्रश्न उत्तर सार धारणा वरदान आदि सुनते हैं, वह आप ही मुरली से निकालते हैं। दादी जी के हर महीने जो दादी जी का पत्र आता है, पत्र पुष्प, अव्यक्त इशारे और दादी जी के क्लासेस, वह भी आप ही सारे विश्व में पहुंचाने की सेवा करते हैं। आपकी एक विशेष कला, सिंधी भाषा में मुरलियां होती थी, उसका सिंधी से हिंदी में अनुवाद करके विश्व भर में पहुंचाने की सेवा भी बाबा आपके द्वारा कराते हैं। आप एक अच्छे लेखक भी हैं, कई पुस्तकें आपने लिखी हैं और पीस ऑफ माइंड चैनल पर अनमोल रतन की जो सीरीज चल रही है उसमें भी आप अव्यक्त मुरलियों के अनेक राज सभी के सामने स्पष्ट करते हैं। बाबा से आपको दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त हुआ है, तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा आदरणीय राजू भाई हम सब के बीच में उपस्थित हैं। आज का विषय है सकारात्मक परिवर्तन द्वारा उदाहरण एवं प्रेरणा मूर्त बनने की विधि। आदरणीय राजू भाई जी,
I'm not afraid to die. शांति, बाबा तो अच्छा है लेकिन बाबा के बच्चे कितने अच्छे हैं। एक आदर्श प्रवृत्ति में रहते हुए दूसरों के लिए उदाहरण रूप बनना, अनेक आत्माओं को प्रेरणा देना, मैं समझता हूँ जितना आप सभी प्रवृत्ति में रहते हुए कर सकते हैं उतना समर्पित भाई बहने नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा उदाहरण है, लोग समझते थे कि ब्रह्मा कुमारियों में तो घर बार छुड़ाया जाता है, लेकिन आप सबने सिद्ध करके दिखाया है कि घर बार छुड़ाया नहीं जाता है, घर को आदर्श बनाया जाता है। लक्ष्य हमारा शुद्ध प्रवृत्ति, हम शुद्ध प्रवृत्ति के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। मार्ग हमारा जीवन मुक्ति, लक्ष्य हमारा शुद्ध प्रवृत्ति। तो आप सभी शुद्ध प्रवृत्ति के एक बहुत सुंदर उदाहरण हो, जिस बात को बड़े बड़े साधु संतों ने, महात्माओं ने असंभव माना, वो आप सबने संभव करके दिखाया है। वो तो कहते थे कि आग और कपूस, पति और पत्नी एक साथ रह करके पवित्र नहीं रह सकते, लेकिन आप सभी का अनुभव है, चैलेंज है कि हम दोनों साथ रहते हैं लेकिन कभी भी विकारों की संकल्प तक भी नहीं आते। ऐसा सुंदर उदाहरण आपसे अधिक और कौन दे सकता है। इसलिए बाबा भी आपको वतन से बहुत प्यार करते हैं कि मेरे ऐसे प्रेरणा मूर्त, ऐसे उदाहरण स्वरूप प्रवृत्ति में रहते हुए पर वृत्ति में रहने वाले बच्चे, जिनकी वृत्तियों में भी प्रवृत्ति का भान नहीं है, गृहस्थी नहीं समझते हैं, वो शुद्ध प्रवृत्ति वाले हैं, जिनकी वृत्तियां सबसे न्यारी हैं, सबसे प्यारी हैं। तो आज आप सभी जब से बाबा के बच्चे बने हैं, अपने परिवर्तन पर नजर दौड़ा के देखो, पास्ट जीवन क्या थी और बाबा ने अपना बनाया, कहाँ से कहाँ पहुँचाया, क्या से क्या बना दिया, कैसे आप प्रवृत्ति में रहते हुए गृहस्थ व्यवहार को संभालते हुए ट्रस्टी बन करके रहते हो, बहुत बड़ा ये परिवर्तन है। जो गृहस्थी है, परिवार है, संभाल भी रहे हैं, सेवाएं भी कर रहे हैं, व्यवहार भी निभा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी फंसते नहीं हैं, अटकते नहीं हैं, निमित्तपन के भाव से इतना बड़ा निर्माण का कार्य कर रहे हैं। तो प्रवृत्ति में रहते बाबा ने हर बच्चे को ट्रस्टी बनाया है। ट्रस्टी माना ईमानदार, ट्रस्टी माना कहीं पर भी मोह ममता नहीं, लगाव नहीं, झुकाव नहीं। जो कुछ बाबा का दिया हुआ है वहाँ जरा भी मेरापन नहीं, चाहे बच्चे हैं, परिवार है, अनेक संबंध हैं, अनेक सेवाएं हैं, अनेक जवाबदारियां हैं, लेकिन सब कुछ निभाते हुए यही एक स्मृति है, ये सब बाबा तेरा है, तेरा है, तेरा है, मेरे को तेरे में जिसने परिवर्तन किया है वो हाथ उठाओ, मेरे को तेरे में परिवर्तन करने वाले बैठे हैं कि अभी भी मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी जवाबदारी, मेरी नौकरी, मेरी टोकरी, नहीं कौन कौन मेरे वाले हैं, थोड़ा मेरे वाले हाथ उठाओ, मेरे वाले मेरा है या तेरा है। कितना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है कि हम सब इतना सब कुछ करते हुए भी कभी भी ये नहीं कहते ये मेरा है, जहां पर मेरा है वहां फेरा है, जहां पर अनासक्त भाव है, सेवा भाव है, सेवा के लिए हमें प्रवृत्ति मिली है, ये बाबा की सेवा का साधन मिला है, जो हम बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, परिवार को चलाने के लिए, बाबा की सेवा के लिए कर रहे हैं, बाबा ने परिवार दिया है उस परिवार की संभाल के लिए कर रहे हैं। आज दुनिया में जितने दुख दर्द हैं, जितने तनाव, जितनी परेशानियां हैं, उनका मूल कारण अगर देखें तो मेरापन है। एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाते हैं लोग कि एक प्रवृत्ति में बुजुर्गों की एक आदत होती है, जो बड़े होते हैं, कमाने वाले होते हैं, वो भले खुद नहीं खाते हैं लेकिन बच्चों के प्रति बहुत मोह रहता है। तो ये एक ऐसे ही सेठ जी थे, एक दुकान में बैठते थे, छोटी सी दुकान थी, लेकिन सारा समय जो भी कमाई होती वो इकट्ठा करते, खुद भले इकोनॉमी से चलते, फटी धोती पहनते, फटा कुर्ता पहन लेते, खाना खाया नहीं खाया, लेकिन कमाने का बड़ा शौक था, और कमाते जाते, गिनते जाते, और उसके साथ साथ अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मकान बनाने लगे, और रोज उसको देखते खुश होते कि इसमें मेरा बेटा रहेगा, इसमें मेरे बेटे का बेटा रहेगा, इसमें नाती रहेगा, इसमें बेटी रहेगी, रोज हिसाब लगाते, और बड़ी बिल्डिंग, बहुत बढ़िया सुंदर बिल्डिंग बना दिया, ठगी करके, पैसा इकट्ठा करके, कैसे भी करके। जब बिल्डिंग बन के खड़ी हुई, रोज देखने जाते, खुश होते, वाह मेरे खून पसीने की कमाई से मैंने ये बना दिया, मैंने ये बना दिया, लेकिन अचानक एक दिन कुछ कारण बना, शॉर्ट सर्किट हुआ और उस बिल्डिंग में आग लग गई। लोगों को पता था कि ये बूढ़े बाबा को बड़ा मोह है इस बिल्डिंग से, पता नहीं उनका क्या हाल होगा। तो छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए आए, बाबूजी बाबूजी आपकी उस बिल्डिंग में तो आग लग गई। जब उनकी नजर उधर गई, देखने लगे, देखते ही उनका बीपी बढ़ गया, हाय हाय करने लगे, तड़फने लगे, बेहोश होने लगे। बच्चा दौड़ के आया, बाबूजी क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे बेटा क्या बताऊं, मेरी सारी जिंदगी की कमाई, मेरे खून पसीने की कमाई, मेरी मेहनत मेरे सामने जल रही है, अब मुझे नहीं जीना। बस तड़फने लगे। बेटा समझदार था, उसने कहा बाबूजी एक गलती मेरे से हो गई, मैंने आपको बताया नहीं, मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ी और मैंने ये बिल्डिंग तो बेच दी, ये मेरी नहीं है। एक चेक दिखा दिया उसके हाथ में, ये बिल्डिंग मेरी नहीं है, बस एक ही विचार दिया, ये मेरी नहीं है, और उसका बीपी नॉर्मल हो गया। बिल्डिंग जल रही है वैसे ही आग लगी है, लेकिन एक विचार परिवर्तन हुआ। जहाँ मेरापन था वहाँ तड़फ रहा था, रो रहा था, परेशान हो रहा था, और एक संकल्प उसको मिला, ये मेरा नहीं है। बस नॉर्मल हो गया, जाने दो, जलने दो, मेरा नहीं है। तो आप सभी अगर कहीं पर भी जरा भी इस कलयुग के अंत में मेरापन लाएंगे तो परिणाम क्या होगा, इसलिए ध्यान देना। बाबा ने हम सबको इस मेरेपन से छुड़ाया है। बच्चे, इस कलयुग के अंत में जरा भी कहीं मेरापन नहीं रखना, नहीं तो वो सभी दुखों का मूल कारण है। सब बाबा तेरा है, तूने दिया है, तेरे काम में आ जाए। तन मन धन समय संकल्प श्वास जो कुछ है तो प्रभु देन है। और जिसने ऐसा ट्रस्टीपन को अपना लिया वो आदर्श प्रवृत्ति है, और उसको देख करके लोगों को बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं। इनको कभी दुख ही नहीं होता, इनको कभी तनाव ही नहीं होता। इतनी महंगाई बढ़ रही है, इतने हंगामे हो रहे हैं, ये सब कुछ होते हुए भी ये तो बेफिक्र बादशाह है, इनको कुछ लगता ही नहीं है। अरे भाई, कुछ तो फिक्र करनी चाहिए, बच्चे हैं, शादी करनी पड़ेगी, ये करना होगा, चिंता तो होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए। और बाबा के बच्चे कहते हैं, हम तो बेगमपुर के बादशाह हैं, बेफिक्र बादशाह हैं, क्योंकि सब जानते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना आए, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होई। जब कुछ अनहोनी है ही नहीं तो चिंता किस लिए करें। तो ऐसा सुंदर सकारात्मक परिवर्तन किस आधार से आया है? उसका आधार पढ़ाई, मुरली। जो बाबा के बच्चे रेगुलर पंचुअल महावाक्य बाबा के सुनते हैं, बाबा उनको हर प्रकार से गाइड करता है। और जब उस महावाक्यों को अपने जीवन में उतारते जाते हैं तो सबके लिए एक आदर्श उदाहरण स्वरूप प्रेरणा मूर्त बन जाते हैं। क्योंकि कलयुग के अंदर परिस्थितियां, समस्याएं, पेपर किसके सामने नहीं आते। अचानक कभी कभी ऐसे ऐसे खेल होते हैं, ज्ञानी आत्माएं भी हिल जाती हैं, भगवान पर भी दोष देने लगती हैं, दुखी हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। लेकिन जो बाबा के ज्ञानी बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, उन परिस्थितियों का बहुत सहज सामना करते हैं, अपनी स्थिति को डगमग नहीं करते। वो जानते हैं परिस्थितियों का आना स्वाभाविक है, क्योंकि कलयुग है। लेकिन परिस्थितियों पर मैंने कल्प कल्प विजय प्राप्त की है, हम ही विजयी रतन है। जब ये स्वमान स्मृति में रहता है तो परिस्थितियां हिलाती नहीं है। कई मिसाल हैं। अचानक आजकल अकाले मृत्यु का एक तांडव चलता है। एक परिवार था, बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, अपने स्कूल के बच्चों के साथ टूर पर गया था चेन्नई की तरफ, सागर में नहाने के लिए। सभी बच्चे पानी में चले गए, सब तो खेल पाल करके निकल आए, लेकिन एक बेटा पानी के साथ लहरों के साथ बह गया। काफी दिक्कत के बाद, ढूंढने के बाद उसकी लाश मिली, शव मिला, और वो था एक बाबा की अनन्य बच्ची का बेटा, अकलौता बेटा। समाचार मिला कि उस माता का क्या हाल होगा, इतना खर्चा किया, इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अभी पता नहीं क्या होगा। लेकिन वो आत्मा इतनी शक्तिशाली थी, बाबा के ज्ञान को यथार्थ उसने जीवन में उतारा हुआ था। जब उसको पता चला और बॉडी जब उसके घर में आई तो सारे मोहल्ले के, सारे परिवार के लोग हाय तोबा मचाए हुए थे, रो रहे थे, और माता साक्षी दृष्टा होकर के शांत होकर के उसको योगदान दे रही थी। सबने सोचा कहीं ये डिप्रेशन में न चली जाए, इसको रुलाओ। बहुत कोशिश की अड़ोसियों ने, पड़ोसियों ने, संबंधियों ने, इकलौता बेटा ऐसे चला गया, इसका क्या हाल होगा माँ का, माँ है आखिर। उसने कहा आप तो कोई चिंता नहीं करो, वो जिसका था उसके पास गया है, मुझे कोई अफसोस नहीं है, इसको नया पार्ट मिलेगा, नया पार्ट बजाएगा और अच्छा से अच्छा बजाएगा। एक आंसू नहीं बहाया उसने। और इसका परिणाम ये हुआ, इसका प्रभाव ये हुआ कि जितने उसके संबंधी लोग उसका विरोध करते थे, ज्ञान का विरोध करते थे, उन सब ने कोर्स किया और सभी ज्ञान में आ गए। बाबा अपने बच्चों को ऐसा प्रेरणा मुहूर्त बनाना चाहते हैं। कई बार बाबा की मुरलियां सुनते हो कि बच्चे प्रवृत्ति में मुख से ज्ञान कोई नहीं सुनना चाहता। कोई अपना घर में ज्ञान देना शुरू करेगा, कहेंगे पता नहीं कुक्कड़ ज्ञानी, कल क्या करता था आज क्या कर रहा है, आज बड़ा ज्ञान देता, बड़ा उपदेश देता है, इसके अंदर इतना गुस्सा था, इतना भ्रष्टाचार करता था, आज बड़ा ज्ञानी बन गया। लेकिन बाबा कई बार कहते हैं बच्चे मुख से ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, आप अपने जीवन के परिवर्तन से लोगों को बाबा की तरफ आकर्षित कर सकते हो। और जीवन से कैसे आकर्षित होते हैं, मैं एक उदाहरण और बताता हूँ। एक भाई बहुत बड़ा ज्वेलर था, संग दोष उसको लगा और संग दोष में आकर के उसने शराब पीना शुरू किया, बहुत कुछ व्यसनों के अंदर अधीन हो गया, इतना गुस्सा, इतना शराब, इतना व्यसन, सब बुराइयां। तो एक दिन मैं बॉम्बे का था, मैं बॉम्बे गया था, तो मेरी गाड़ी चलाते हुए कहता है भाई जी मैं अपना अनुभव सुनाऊं। तो भाई सुना रहा था, उन्हें कहा भाई जरूर सुनाओ, हम तो फ्री बैठे हैं, गाड़ी तो आप चला रहे हो। तो कहता है मैं रावण का भी बाप था। तो मैं उसकी तरफ देखने लगा, तो क्या बोला, रावण का बाप कौन था? तो कहता है अरे जितने रावण में ऐब बुराइयां थी उससे कई गुना ज्यादा मेरे में थी, मैं इतना तो पीता था जो नाले में पड़ा रहता था, अगर मैं गली से निकल जाता था तो लोग अपने घरों का, दुकानों का दरवाजा बंद कर लेते थे, सारे घर के लोग मेरे से एंटी हो गए, विरोधी हो गए, कोई मेरे से बात नहीं करता, न पड़ोसी बात करते, न परिवार वाले बात करते, मुझे सब नफरत की दृष्टि से देखने लगे, जितना मेरे पास धन था, परिवार की संपत्ति थी, मैंने सब व्यसनों में, बुराइयों में, व्यभिचार के कारण गंवा दिया। लेकिन एक दिन ऐसे ही लड़खड़ाते हुए शराब पी करके मैं ब्रह्मा कुमारी इसके सेंटर पर दरवाजे में पहुंचा, तो बहनों ने बड़े प्यार से कहा भैया आओ आओ, और उन्होंने मुझे इतना प्यार से अपने पास बिठाया, इतना प्यार से मेरे से रिस्पेक्ट से बात की, वो दिन और आज का दिन मेरा जीवन बदल गया, रोने लगा बस। कहता है वो जीवन का क्षण भगवान ने कैसे मुझे बदला, आज मेरा मोहल्ला, मेरे सारे संबंधी ब्रह्मा कुमारियों में भले ज्ञान में कहीं आए कहीं नहीं आए, लेकिन सब कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों के पास जादू है, इसको इन्होंने बदल दिया। जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है तब तक दूसरों को ज्ञान की छाप हम नहीं डाल सकते। पक्का करो कि अगर हमारे जीवन में कल क्रोध था, जो आज बाबा की मुरली चल रही थी, मैं सुनते हुए कह रहा था बाबा जो मुझे क्लास कराना है वो तो आप ही ने करा दिया, मैं क्या करता हूं। कितना प्यार से बाबा ने कहा पांचों भूत पांचों विकार, सबसे ज्यादा तो ये काम और क्रोध ने हर घर में घुस करके सबको परेशान किया है। जो हीरे जवाहरात से भरा हुआ मटका था उसको सुखा दिया। एक क्रोध का भूत अगर किसी में आता है उसके घर के मटके सूख जाते हैं, वो सारे घर को परेशान कर देता है। प्रवृत्ति में भी अगर कोई ज्ञान लेते हुए भी गुस्सा नहीं छोड़ पाते हैं, छोटी छोटी बातों में झगड़ जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, भोजन की थाली आती है गुस्से में फेंक देते हैं, व्यवहार शुद्धि नहीं है, तो ज्ञान की छाप आप नहीं डाल सकते। अगर सचमुच प्रेरणा मूर्त बनना है, उदाहरण स्वरूप बनना है, तो हमें शीतल काया वाला योगी बनना होगा। परिवर्तन, और ये परिवर्तन अगर दिव्यता संपन्न है, कुछ भी है, कैसी भी परिस्थिति है, हम धैर्यता से, अंतर्मुखता से अपने आप को शांत कर लेते हैं, चुप कर लेते हैं, तो घर के सब झगड़े समाप्त हो जाते हैं। नहीं तो छोटी छोटी बातों में तनाव पैदा होता है, झगड़े पैदा होते हैं। कई बार तो बच्चे भी कहते हैं, मम्मी आप गुस्सा कर रही हो, बाबा तो मना करता है गुस्सा करने के लिए। वो भी ध्यान खिंचवाते हैं, पड़ोसी भी ध्यान खिंचवाते हैं कि आप तो बड़ा ऊंचा ऊंचा ज्ञान देते हो, इतना गुस्सा क्यों है, लोभ वृत्ति क्यों है, क्यों आप ठगी पैसे किसके लिए कमा रहे हो, भ्रष्टाचार किसके लिए कर रहे हो, क्या चाहिए आपको। तो हम सबको बाबा ने उदाहरण रूप बनाया है, प्रेरणा मूर्त बनाया है। हम सिर्फ बाबा के बच्चे ज्ञान को यथार्थ समझ करके जो बदलने की, परिवर्तन करने की चीजें हैं, जो अशुद्धियां आई हैं संस्कारों में, उन्हें ज्ञान और योग के बल से परिवर्तन करें। कैसे परिवर्तन करें, बाबा ने हमें चार सब्जेक्ट पढ़ाई हैं, अधिक ज्ञान नहीं दिया है, लेकिन चारों सब्जेक्ट को अगर हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। अगर हमने ज्ञान को यथार्थ रीति से समझा है तो ज्ञान हमें कहता है, बच्चे मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करो। ज्ञानी तू आत्मा कभी किसी भी बंधन में नहीं बन सकती, किसी भी बंधन में नहीं बंधेगी, चाहे वो देह का बंधन है, चाहे संबंधों का बंधन है, चाहे संस्कारों का बंधन है, चाहे साधनों का बंधन है, और सबसे बड़ा बंधन अपने संकल्पों का, विचारों का है। अगर ज्ञान को यथार्थ समझा है, बाबा आज कितना प्यार से कह रहे थे, बच्चे संकल्पों की इकोनॉमी का अवतार बन जाओ। संकल्प कितने चलते हैं, व्यर्थ नेगेटिव क्यों लगी हुई है, क्या बाबा के बनने के बाद इस ज्ञान की सब्जेक्ट को यथार्थ समझा है कि जब ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है और इस ड्रामा के अंदर हर एक्टर का पार्ट बिल्कुल यथार्थ है, कोई कुछ भी कर रहे हैं वो अपने ड्रामा के नूंद प्रमाण कर रहे हैं, फिर हमें संकल्पों में अपनी एनर्जी गंवाने की जरूरत है। ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है, इस सेंटर पर एक ठीक नहीं, ये बहनें ठीक नहीं कर रही, ये भाई ठीक नहीं कर रहे हैं, कितने संकल्प हमारे व्यर्थ जाते हैं और खुद के भी जाते हैं और दूसरों के अंदर भी भर देते हैं कि ये भी ऐसे हैं, उनको भी बता बता करके उनकी भी भावनाओं को तोड़ देते हैं। आप सब इस बात को अंडरलाइन करना, जब ये ड्रामा बहुत एक्यूरेट कल्याणकारी है, बाबा ने कहा है, बच्चे हर आत्मा इस ड्रामा में निर्दोष है, क्यों दोष दृष्टि रख रहे हो, क्यों अपनी स्थिति को खराब कर रहे हो उसके पीछे। मुझे तो बहुत अटेंशन जाता है, जब हर आत्मा निर्दोष है तो मैं उसके बारे में चिंतन करके अपने मन को डिस्टर्ब क्यों करूं। जितना आप इस ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ रीति से समझते जाएंगे, बाबा ने अधिक नहीं पढ़ाया, ABCD पढ़ाई, आत्मा का ज्ञान दिया, ए पढ़ा दिया, बी पढ़ाया बाबा ने अपना ज्ञान दे दिया, सी पढ़ाया क्रिएशन का ज्ञान दे दिया, रचना का ज्ञान दे दिया, डी पढ़ाया ड्रामा का ज्ञान दे दिया, बस ABCD पढ़ लिया हमने और कुछ हम पढ़े नहीं है। लेकिन अगर ABCD को यथार्थ रीति से समझ गए हैं तो कभी भी हलचल में नहीं आ सकते। अभी वर्तमान समय हर एक बाबा के बच्चे को सिर्फ ज्ञान सुनाने वाला नहीं बनना है, ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तू आत्मा बनना है। उस ज्ञानी तू आत्मा की दृष्टि, उसकी वृत्ति, उसकी स्मृतियां, उसके बोल, उसके कर्म, उसका व्यवहार ज्ञानी है। अगर आपको देख करके कोई कहे कल तक इसकी दृष्टि बड़ी चंचल थी, बहुत देहमान वाली थी, विकारी थी, पतित थी, आज ये बदल गया, इसकी दृष्टि कितनी निर्मल है, कितनी रूहानियत से संपन्न है, कितनी स्नेह वाली है, इसकी विकारी भावनाएं चेंज हो गई, ये दृष्टि का परिवर्तन महापरिवर्तन है। हम सब का पहला ऑपरेशन बाबा ने दृष्टि का किया है, क्रिमिनल दृष्टि को सिविलाइज्ड बनाया है। किसी को भी हम देख रहे हैं तो उसके रूप को नहीं देखते, उसके रुपये को नहीं देखते, तो आत्मा चमक रही है, मणि चमक रही है, हीरा चमक रहा है, हमारा ध्यान उसके स्वस्वरूप पड़ जाता है। ये दृष्टि परिवर्तन, क्रिमिनल दृष्टि को बाबा ने सिविल बना दिया, बच्चे आत्मा को देखो, ये आत्मा कितना अच्छा पार्ट बजा रही है, ये आत्मा मेरा भाई है, हम सब एक घर से आए हैं, ये बेहद की भावना है दृष्टि परिवर्तन की। वृत्तियों का परिवर्तन किया, वृत्तियां जो चंचल थी, भटक रही थी, उनको अनासक्त बनाया, वैराग्य का बनाया, उपराम कर दिया, हमारा दृष्टिकोण बदल दिया, हमारे बोल में जो अहम भाव था, अंदर का अहंकार झलकता था, उसको बाबा ने मधुर सरल बना दिया, पाठ पढ़ाया कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो जरूरी है वही बोलो, नहीं तो चुप हो जाओ। अगर ये अपने जीवन में हमने धारणाएं ले ली, ज्ञान स्वरूप स्थिति बना ली, तो अनेकों के लिए हम सब प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे, अनेक आत्माओं को प्रेरणा प्राप्त होगी। कलयुग जब एक बहुत विपरीत दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, पांचों भूत हरेक के अंदर व्याप्त हैं, कोई भी इनसे छूटा हुआ नहीं है, एक उल्टी दिशा की ओर अगर कोई बढ़ता है तो उसको मेहनत लगती है, जिधर दुनिया जा रही है उधर आप भी जाओगे तो क्या बड़ी बात है, आपने उसके विपरीत दिशा ली है कि जब दुनिया में विकारों की आग लगी हुई है, हम बाबा के बच्चे संपूर्ण निर्विकारी बन के दिखाएंगे, हम पवित्र और योगी बन करके दिखाएंगे, हमारी वृत्तियां कहीं भी आसक्त नहीं होंगी, हम अनासक्त बन के दिखाएंगे। कितने भी आकर्षण करने वाले पदार्थ हों, कितनी भी चीजें, कितनी अच्छी अच्छी माया भी दुनिया में आ जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी अनासक्त वृत्ति दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएगी। मुझे बहुत स्थानों पर बाबा भेजता है सेवा के लिए, हमें बहुत ऑफर मिलती है, भाई साहब ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये चीज देखने चलो, ये देखने चलो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बहन जी इसके लिए नहीं आया हूँ, चाहे मैं अमेरिका गया, चाहे लंदन गया, चाहे जहाँ गया, मैंने एक मॉल नहीं देखा, एक दुकान पर नहीं गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं दाता का बच्चा हूँ, किसी से लेने नहीं आया हूँ, ज्ञान धन देने आया हूँ। छाप वहां लगती है जहां पर हम अपने जीवन से लोगों को प्रेरणा देते हैं, हम भी जाएं, ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी क्रीम है, ये बहुत अच्छी चीज है, एक बहुत अच्छे स्वेटर है, साले हैं, ले जाएं, क्या यहाँ नहीं मिलता है क्या हमको? भाई कोई जाते हैं यही चीजें इकट्ठी करके ले आते हैं। बाबा ने हमें कुछ इतना अनासक्त बना दिया है, कुछ नहीं चाहिए, कोई चीज की आसक्ति नहीं, कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसी जीवन की निजी धारणाएं बनती हैं तब हम दूसरों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। लोग जाते हैं कितना सामान इकट्ठा करते हैं, कितनी चीजें इकट्ठा करते हैं, ये ले जाऊं ये ले जाऊं ये ले जाऊं, जरूरत कुछ नहीं होती है, लेकिन संग्रह वृत्ति का एक इतना बड़ा शौक होता है जो घर को लोग गोदाम बना देते हैं। कितना खाएंगे, कितना पहनेंगे, कितनी चीजें रखेंगे, लेकिन ये भी अच्छी है, ये भी सस्ती है, ये भी ले चलो। बाजार में गए, दुकान में गए, जितनी चीजें अच्छी लगी हो सब इकट्ठा करके ले आए। यूज करते हो, आवश्यकताएं हैं। हमारी दादी जानकी जी हमको एक बार सिखाती थी कि अगर कोई चीज तुम्हारे पास है और तुमने उसे 6 मास तक देखा नहीं है, यूज नहीं किया है, तो क्यों स्थान रख करके अपने पर बोझ चढ़ा रहे हो? दान कर दो, सेवा में लगा दो। संग्रह वृत्ति नहीं चाहिए, वृत्तियां अनासक्त। बोल बड़े मधुर, सम्मानजनक, और व्यवहार की इतनी शुद्धता है जो हर आत्मा महान है, श्रेष्ठ है, उसी तरह से उसको देखें, रिस्पेक्ट दें। तो ज्ञान जो बाबा ने हम बच्चों को दिया है, वो ज्ञान अगर स्वरूप में आता है तो वो जीवन का परिवर्तन लोगों को अपने आप आकर्षित करता है। कि देखो कैसे रहते हैं संसार में, प्रवृत्ति है लेकिन इनको प्रवृत्ति का भान ही नहीं है। बाबा के ऊपर हमने इतना अर्पित कर दिया, बाबा सब तेरा है, सब तेरा है, सब तेरा है, संभालता है वो, और अच्छे से अच्छा संभालता है। लोग जैसे रह रहे हैं उनसे हम कई गुना अच्छे रहते हैं, रॉयल्टी से रहते हैं, लेकिन कहीं पर भी ना स्वच्छता है ना कोई डिमांड है। तो ध्यान देना, ज्ञान की सब्जेक्ट हमें मुक्त बनाती है, मुक्त, कहीं पर भी बंधन नहीं। अगर कोई ज्ञानी तो आत्मा किसी न किसी बंधन में बंधा हुआ है, वास्तव में उसने ज्ञान को समझा ही नहीं है। इसलिए ध्यान देना, किसी भी प्रकार का बंधन बंधन है। आजकल भक्ति का भी बंधन है, गुरुओं का भी बंधन है, बुद्धि का भी बंधन है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं समझदार हूं, मैं होशियार हूं, मैं अनुभवी हूं, मैं बुजुर्ग हूं, इसका भी बंधन है। इसलिए बाबा के बच्चों को, ज्ञानितु आत्माओं को बंधन मुक्त बन करके रहना है। और अगर योग बाबा से यथार्थ है, हमारा कनेक्शन जुटता है, करंट आती है, तो सर्व शक्तियों से आत्मा संपन्न है। जिस शक्ति की जिस समय आवश्यकता है, वो शक्ति अपने आप समय पर काम करती है। आवश्यकता है सहन करने की, आवश्यकता है सामना करने की, आवश्यकता है समा लेने की, लेकिन जब वो बात आई उस समय हमने समाया नहीं, सामना कर लिया। जिस समय सहन करना था उस समय हमने समा लिया। बाबा कहते हैं वो शक्ति आपका कहना नहीं मानती है, आपका योग यथार्थ नहीं है। योग में बाबा की टचिंग आती है। बाबा अपने बच्चों को शक्ति दे देते हैं जो परख सकता है, निर्णय कर सकता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। यथार्थ योग है तो वो सर्व शक्तियां समय पर अपने आप काम करती हैं, विचलित नहीं होता, अधैर्य नहीं होता, तुरंत क्यों क्या कैसे के प्रश्नों में नहीं उलझता, बड़ा धैर्यता के साथ संकल्प को भी शांत रख करके उस परिस्थिति को देखता है और अपनी शक्ति से उसको पार कर लेता है। क्या करना है इस समय, बुद्धि उसके समय पर ठीक निर्णय करे, समय पर अगर बुद्धि ठीक निर्णय कर लेती है तो कैसी भी बातों को आप बहुत सहज पार कर सकते हो। इसलिए ध्यान देना, कभी भी तुरंत जवाब नहीं देना है, उतावला नहीं होना है, उत्तेजित नहीं हो जाना है, इसने मुझे ऐसे कह दिया, इसने मेरे साथ ऐसे कर लिया। एक मिनट साइलेंस। हमें दादी जानकी जी ने ऐसा पढ़ाया, कभी भी कोई बात हम लेके जाते थे, बहुत सारे पत्र व्यवहार करना पड़ता था, दादी के सामने गए, वो समझती इसके पास बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे पत्र लेके आया है, मेरे कहती है एक मिनट साइलेंस, ऐसे बैठ के दृष्टि देने लगती, जो अंदर लेके गया वो सब शांत हो जाता, चुप। उनकी शक्तिशाली दृष्टि से, वो साइलेंस के वाइब्रेशन से आत्मा एकदम शांत हो जाती, हलचल समाप्त हो जाती। फिर अगर कोई बात सुनाने लगते तो उनका एक ही शब्द होता, डोंट थिंक। मैं हंसता, दादी डोंट थिंक करने से काम बिगड़ेगा? नहीं, क्या बोलता है? जो काम की चीजें नहीं है, जिनका तेरे पास हल ही नहीं है, उसको सोचने से फायदा क्या? इसलिए सोचना बंद कर दो, सब ठीक करेगा बाबा अपने आप। ये उनकी योग की पावर थी, और योग की पावर से उन्होंने कई प्रॉब्लम्स का सहज समाधान कर दिया, कईयों की जीवन बना दी, उदाहरण रूप हमारे सामने बनी। हजारों विदेशी भाई बहने जो इतनी प्रॉब्लम्स में रहते हैं, उन सब की प्रॉब्लम्स को हल कर दिया सिर्फ साइलेंस के बल से, योग के बल से। हम सबको बाबा ने एक ही विधि बताई, आज बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है वरदान के अंदर, चाहे समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, सबको नंबर वन में आने का चांस है, लेकिन ईश्वरीय विधान जो बनाया है उस विधान की विधि से सिद्धि प्राप्त करो। आपका चिंतन चलता है या नहीं? मैं मुरली टाइप करता हूं, लिखता हूं, तो मुझे बहुत सोच चलता है, कितने विधान बाबा ने हमारे आगे विधि बताई, और उन विधियों के अनुसार अगर हम चल रहे हैं तो सिद्धि हमारे पीछे पीछे आती है। सफलता के लिए हमें भटकना नहीं है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन विधि यथार्थ होनी चाहिए, उसमें अलबेलापन नहीं चाहिए। कौन सी विधि आज बताएं? हिम्मत का एक कदम आगे रखो, हजार गुना मदद के लिए बाबा बंधा हुआ है, मांगो नहीं, बाबा मदद करो, बाबा आशीर्वाद करो, बाबा कृपा करो, तो मैं मांगने से कुछ नहीं देता, भिखारी थोड़ी हो, बच्चे हो मेरे, मांगते क्यों? कदम आगे बढ़ा दो हिम्मत का, मैं मदद के लिए बन जाऊंगा। विघन है, क्या करूं? बाबा कहता है क्या, क्यों क्यों कर रहे हो, तुम कमजोर हो क्या? विघ्नों का काम है आना, और तुम्हारा काम है विघ्नों पर विजय प्राप्त करना। विघ्न विनाशक तुम मेरे बच्चे हो, लेकिन विधि को अपनाना। क्या विधि है? लगन की अग्नि विघ्नों को समाप्त करती है। अगर लगन की विधि को हमने अपनाया, हमने बाबा में और लग गए, प्यार से याद करने लगे, बाबा ये कार्य है, लगन लग गई, तो विघ्न खत्म हो गए। कोई भी विघ्न नहीं है, किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं है, लेकिन लगन की परीक्षा है। लगन माना जिगरी बाबा से प्यार, समर्पण भाव। बाबा के लिए हम सब हैं, हमारे लिए क्या है? हम तो बाबा के लिए कर रहे हैं, बाबा के कार्य में हम मददगार हैं, इसलिए लगन है तो विघ्न नहीं रहते। अगर निश्चय है तो विजय निश्चित है, अगर संकल्पों में दृढ़ता है तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। ये सब विधियां हैं, और रोज वरदान के अंदर, जब से मैंने शुरू किए वरदान लिखना बनाना, मेरा एक ही लक्ष्य रहता है, पहली लाइन के अंदर जो भव वाली लाइन है वो मेरी क्रिएट की हुई है, आप देखेंगे, वो भव जब कहा है बाबा ने तो उसकी विधि बताइए, ऐसे नहीं भव हो जाएगा। अगर विधि को अपनाएंगे तो वो सिद्धि सफलता वरदान की हमें प्राप्त होगी। बाबा किसी बच्चे को तथास्तु नहीं कहता है, हो जाएगा नहीं, ये करोगे तो ये होगा, ये विधि है, ये सिद्धि है, ये कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ये कोई चमत्कार वाला ज्ञान नहीं है, ये विधि से सिद्धि है। आप विधियों पर चलते रहो, जो बाबा ने अमृत वेले से रात तक की विधियां बनाई है, नियम बनाए हैं, कायदे बनाए हैं, जो बाबा के बच्चे उन कायदों प्रमाण चलते हैं, नियमों का पालन करते हैं, उनकी श्रेष्ठ जीवन, महान जीवन लोगों के लिए एक आदर्श उदाहरण बन जाती है। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अमृत वेले उठते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, रोज नियमित ज्ञान योग की अध्ययन करते हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। मैं आपको 5 स्मृतियां बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं चारों सब्जेक्ट की विषय बात कर रहा हूं कि ज्ञान है तो आत्मा मुक्त है, योग यथार्थ है तो सर्व शक्तियां समय पर काम करती हैं, और धारणाओं पर ध्यान है तो जिस गुण की जरूरत जब है वो दिव्य गुणों से आत्मा स्वतः संपन्न बनती जाती है, और अगर सेवाएं हमारी यथार्थ हैं, बहुत सारी सेवाएं बाबा ने हम बच्चों को दी हैं, लेकिन आज सेवा ने अपना रूप बदल लिया है, नाम के लिए, मान के लिए, शान के लिए, पिक्चर के लिए, फोटो के लिए सेवाएं कर रहे हैं लोग, स्वार्थ भाव आ गया सेवा में, देखा देखी आ गई, रीस रेस आ गई, विंग बने, ये विंग वाला ये कर रहा है तो मैं ये करूं, ये इससे मिलने जा रहा है तो मैं इससे मिलने जाऊं, क्या देखा देखी लगी हुई है, ये सेवा है क्या? बाबा ने सेवा हमें सिखाई है, सुख देना है, सुख लेना है। अगर सेवाएं किसी आत्मा को डिस्टर्ब कर रही हैं, सेवाओं में अगर कोई भेदभाव आ रहा है, रीस रेस चल रही है, तो बाबा कहता उन सेवाओं की मास्ट जमाई नहीं होती, मेरे पास उनका खाता नील है। सेवा करो, बाबा कराने वाला करा रहा है, जो सेवा सामने आए, जी बाबा, हाँ जी बाबा, वो कराने वाला है, हम लोग क्या हैं, निमित्त हाथ आगे बढ़ाओ करा लेता है, लेकिन सेवा मिली है खुशी देने के लिए, खुश रहने के लिए। अगर सेवा हमारी खुशी को गायब कर दे, सेवा हमारी स्थिति को डिस्टर्ब कर दे, इस सेवा से हमारा मन मुटाव हो जाए, सेवा से कहीं आपस में वार्तालाप बंद हो जाए, मैं समझता हूँ वो सेवा यथार्थ नहीं है। सेवा सुख देने के लिए है, सुख लेने के लिए है। सुख दो सुख लो, खुशी दो खुशी लो, संतुष्ट रहो संतुष्ट करो। अगर सेवाओं में मनसा कर रहे हो, वाचा कर रहे हो, कर्मणा कर रहे हो, तन से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, धन से कर रहे हो, समय शक्ति लगा रहे हो, लेकिन रिजल्ट में खुशी नहीं है, रिजल्ट में सबका सम्मान स्नेह नहीं है, तो सेवा किस लिए है? इसलिए ध्यान देना, सेवाएं हमारी खुशी के खजाने को भरपूर कर देती हैं। अगर खुशी गायब हो जाती है तो बाबा कहता सेवा छोड़ दो, तुम जरूरत नहीं तुम्हारी सेवा की। और 5वीं बात है व्यवहारिक जीवन, संबंध संपर्क। आप सब व्यवहार में हैं, परिवार में हैं। बाबा ने कभी भी ये ज्ञान नहीं दिया कि तुम व्यवहार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, बैलेंस रखो। बहुत बड़ा बैलेंस भगवान ने सिखाया है, अगर बैलेंस से चलोगे तो बाबा की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कभी भी ज्ञान की ग्लानी नहीं होगी, नहीं तो कहेंगे देखो ये ब्रह्मा कुमारियों में गया, इसके बच्चे रुल गए, इसका व्यापार खत्म हो गया, पता नहीं कौन सा ज्ञान इनको दे दिया गया, ये परिवार ही सारा खराब हो गया, ये बाबा का नाम बाला किया क्या, ये हमने प्रेरणा दी लोगों को क्या? अगर हम सबको प्रेरणा देने वाले उदाहरण रूप है तो हम व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस रखते हैं। बाबा के लिए है जीवन, मना नहीं है, लेकिन कोई भी चीज की अति नहीं है, अति ठीक ही नहीं है। अति व्यवहार में लग जाओगे बाबा भूल जाएगा, अति परमार्थ में लग जाओगे सेवा भूल जाएगी, व्यवहार भूल जाएगा, दोनों का बैलेंस है। इसलिए बाबा ने हम सबकी लाइफ को बैलेंस से चलाने के लिए तीन भागों में दिनचर्या को बांट दिया। बच्चे 8 घंटा शरीर के लिए है, उसको सुलाना भी है, उसको खिलाना भी है, उसको नहलाना भी है, व्यायाम भी देना है 8 घंटा। लेकिन 8 घंटा है शरीर निर्वाह के लिए, कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए, और 8 घंटा आत्म उन्नति के लिए। योग करो, पढ़ाई करो, चिंतन करो, लिखो, पढ़ो, जो सेवा कर सकते हो। जो बाबा के बच्चे बैलेंस से चलते हैं वो उदाहरण रूप बन जाते हैं, और जो किसी चीज में अति में चले गए, पैसा पैसा पैसा, क्या करोगे पैसा कमाने के लिए, पीछे लगे हो, किसके लिए कर रहे हो। कई तो न योग कर पाते हैं, न मुरली सुन पाते हैं, न अमृत वेला कर पाते हैं, रात को 12 बजे तक बिजनेस चल रहा है, पता नहीं किसके लिए कमा रहे हैं, कहां ले जाएंगे। बैलेंस से चलो, कमाना जरूरी है, पैसे की जरूरत है, कौन कहता नहीं चाहिए, लेकिन अपने शरीर को नहीं ठीक रेस्ट दे रहे हो, भोजन समय पर नहीं कर रहे हो, नींद नहीं कर रहे हो, योग नहीं कर रहे हो, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है, जो अविनाशी कमाई का समय है वो उस स्थूल समय कमाई में जा रहा है, कहाँ बैलेंस है। कैसे आप लोगों के लिए उदाहरण मूर्त बनोगे। अगर सचमुच किसी के लिए उदाहरण रूप बनना है तो कुछ भी हो, हमारा बैलेंस कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। व्यवहार परिवार बनाया है, उसको पढ़ाना है, बड़ा करना है, उसको अपने पांव पर खड़ा करना है, उसको योग्य बनाना है, समर्थ बनाना है, क्योंकि हमने रचना रची है, रचना को हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। लेकिन रचना में इतना न फंस जाए जो हमारा परमार्थ ही छूट जाए, बाबा ही छूट जाए। बैलेंस, और ये अगर बैलेंस किसी को आ जाता है तो अनेक आत्माओं की ब्लेसिंग्स मिलती हैं और अपनी जीवन बहुत आनंदमय ब्लिसफुल बन जाती है, कभी भी तनाव पैदा नहीं होता। तो आप सभी सकारात्मक चिंतन करने वाली आत्माएं हैं। मैं समझता हूं कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, संबंध संपर्क में दुआएं दो, दुआएं लो, ऐसा आपका व्यवहार हो सबके साथ जो सब आपको समय पर साथ दें, सहयोग दें। आपने अगर दिया है तो आपको भी मिलेगा जरूर। इसलिए बाबा कहता है दुआएं दो, दुआएं लो, कोई को डिस्टर्ब मत करो, ना डिस्टर्ब होना है ना डिस्टर्ब करना है। जितना हम न्यारे प्यारे रहते हैं, जितना कर्म और योग का बैलेंस रखते हैं, जितना परमार्थ और व्यवहार पर ध्यान देते हैं, उतनी एक सुंदर जीवन लोगों के लिए आदर्श बन जाती है। लोग कहते हैं ऐसे जीवन होनी चाहिए, अनेक आत्माओं को प्रेरणाएं मिलती हैं, लोग खींच करके आते हैं कि चलो आपको कहाँ से ऐसा ज्ञान मिला, कैसा ज्ञान है, कितना सुंदर है, लोगों की जीवन कितनी दुखमय है और आप इस दुख की दुनिया में रहते हुए कितने सुख स्वरूप हैं, कितने पवित्र स्वरूप हैं। तो ऐसा उदाहरण हमारे सकारात्मक परिवर्तन से आता है। 10:30 का रिकॉर्ड है फिर। 10-15 मिनट में आपको इस टॉपिक को पूरा करूंगा, फिर योग करेंगे आधा घंटा। टॉपिक का बहुत बड़ा विस्तार है इसका। 5 स्वरूपों की स्मृति प्रवृत्ति वालों के लिए स्पेशल। अगर सचमुच अपनी प्रवृत्ति को आदर्श प्रवृत्ति में परिवर्तन करना है, सकारात्मक परिवर्तन लाना है, तो अपने 5 स्वरूप स्मृति में रखना। सबसे पहले अमृत वेले आंख खुले, बाबा मैं आपका बच्चा बच्चा हूँ। बड़ा नहीं बनना, तुम बड़े बनोगे तो बाबा से प्यार नहीं मिलेगा, पालना नहीं मिलेगी, बाबा की गोद नहीं मिलेगी। इसलिए अमृत वेले आंख खुलते ही मिचनू बन जाओ, छोटा बच्चा बन जाओ, बाबा की गोदी में खेलो। बहुत स्नेह बाबा का मिलता है, बहुत बाबा ऐसे सिर पर हाथ रख के कहता वाह बच्चे वाह। कई बार कहता ना बच्चे बन जाओ तो माया से बच जाओगे, मैं दादा दादी बन गया हूँ ऐसा नहीं, मैं बड़ा हूँ, बुजुर्ग हूँ, अनुभवी हूँ, नहीं मैं बाबा आपका बच्चा हूँ। तो पहली स्मृति अमृत वेले के है मैं बच्चा हूँ। फिर दूसरी स्मृति है मैं स्टूडेंट हूँ, गॉडली स्टूडेंट। चाहे जितने ज्ञानी बन जाएं, योगी बन जाएं, अनुभवी बन जाएं, बुद्धिमान हों, समझदार हों, लेकिन स्टूडेंट माना जब तक जीना है तब तक सीखना है, पढ़ना है। पढ़ाई हमारी पूरी नहीं होती अंत तक, चाहे मुरली कितनी बार भी रिवाइज हो, लेकिन एक दिन की भी मुरली मिस हुई माना एब्सेंट पड़ गई। आप सब इस बात पर अंडरलाइन करना कि बाबा रोज के लिए रोज का होमवर्क हमें मुरली द्वारा देते हैं। जो बातें जो समस्याएं दिन में आने वाली हैं उनका सब का समाधान सवेरे सवेरे मुरली में है। उसी भावना से उसी श्रद्धा पूर्वक बाबा के महावाक्यों का श्रवण करना और स्टूडेंट की तरह श्रवण करना, चाहे सुना रहे हो चाहे सुन रहे हो, लेकिन मैं स्टूडेंट हूँ, सिखाने वाला पढ़ाने वाला स्वयं बाबा है, भगवान है, उसकी स्टूडेंट है हम सब। तीसरी बात है हम सभी सारे दिन की दिनचर्या में खुदाई खिदमतगार हैं। केवल खुदा की खिदमत के लिए हम इस सृष्टि पर हैं। चाहे कितनी भी सेवाएं करो, चाहे कोई भी कार्य करो, लेकिन ये केवल इस अंतिम जन्म में ईश्वरीय सेवा के लिए है। गॉडली सर्विस ओनली। हम सब खुदाई खिदमतगार हैं। खुदा ने मुझे खिदमत के लिए, सेवा के लिए इस शरीर में रखा है। सेवा भाव से हम सबको कार्य करना है। चौथी बात, कर्म क्षेत्र पर कई बातें ऐसी आती हैं जिनको क्रॉस करना पड़ता है, विजयी बनना पड़ता है। उसके लिए स्मृति स्वरूप है कि मैं विजयी योद्धा हूं, अहिंसक योद्धा हूं। विजय मेरा जन्म से अधिकार है। माया किसी भी बड़े से बड़े रूप में क्यों ना आ जाए, मैं माया जीत हूं, विजयी हूं। हिलना नहीं है, घबराना नहीं है, क्या करूं, ऐसा संस्कार है, माया इतनी प्रबल है, ऐसे ऐसे परेशान करती है। बाबा कहता वो कागज का शेर है, कुछ भी नहीं है। तुम शक्तिशाली बन जाओ, अपने आप विजयी बन जाओगे। तो विजयी योद्धा हूं, हार खाने वाला नहीं। युद्ध के मैदान में जरूर हूं, क्योंकि बहुत सूक्ष्म युद्ध है। 5 विकारों पर जीत प्राप्त करनी है, इसलिए सब विकारों पर विजय तभी होगी जब हमारी स्मृति होगी हमारे साथ कौन है। सर्वशक्तिमान बाबा हमारे साथ है। कहते हैं जब सुग्रीव और बाली की लड़ाई चल रही थी, युद्ध हो रहा था, तो भगवान ने छिप करके वाली पर वाण मार दिया, क्योंकि दोनों की शक्ल समझ में नहीं आती थी कौन है, दोनों एक जैसे थे। तो इस समय हमारी माया के साथ लड़ाई चल रही है, माया भी कभी कभी भगवान का रूप बना करके आ रही है, बाबा बन के आ रहे हैं, कोई ब्रह्मा बन के आ रहे हैं, बड़ा विकराल रूप माया ने लिया हुआ है। और नहीं समझ पाए तो भटक जाएंगे। माया के स्वरूपों को पहचानना बहुत जरूरी है, इंक्वायरी नहीं करना जाकर के, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म माया है। ऐसे समय पर हम सबको विजयी बनना है, कभी भी किसी के प्रभाव में नहीं आना। आजकल एक कोई व्यक्ति निकला है, सेंटर्स पर जाकर के क्लास करना शुरू करता है, कुछ समय स्टूडेंट बन के रहता है, फिर भाई बहनों को कुछ न कुछ इलायची, कुछ लौंग, कुछ खिला करके अपने वश कर लेता है और यहाँ से मुख करके दूसरी पार्टी में ले जा रहा है। आप सब अंडरलाइन करना, बाबा ने मना किया है किसी के प्रभाव में नहीं आना और किसी के हाथ से कुछ लेके खाना नहीं। इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है, माया अपना भिन्न भिन्न रूप दिखा रही है। हम सबको माया जीत योद्धा बनना है, विजयी बन के रहना है। बाबा का हाथ और साथ न छूटे, इसलिए मधुबन न छूटे, बाबा न छूटे, परिवार न छूटे, इस पर बहुत ध्यान देना, नहीं तो न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। बहुत संभल के चलने की जरूरत है। हम सब रूहानी योद्धा, विजयी योद्धा हैं, युद्ध के मैदान में हैं, इसलिए बाबा का साथ लो, गुप्त कनेक्शन बाबा से प्यार भरा रखो, बाबा आपको मदद करेगा और माया कितनी भी महाबलवान हो, आप विजयी बन जाएंगे। और पांचवा एक स्वरूप है जो निरंतर अगर याद रहेगा तो मंजिल सामने रहेगी, मैं रूहानी यात्री हूँ, यात्रा पर है। यात्री की दो विशेषताएं होती हैं, जो यात्रा पर गए हैं जानते हैं, चाहे अमरनाथ की यात्रा पर गए, चाहे कोई तीर्थ पर भी गए, वो ध्यान देते हैं कि यात्री कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, जिसको आना है आएगा, उसके सामने केवल मंजिल रहती है, भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे समय पर वहां पहुंचना है, चाहे जितनी चढ़ाई हो चाहे जितनी बाधाएं हो, सबको क्रॉस करते हुए धुन लगा करके, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहा है चाहे अमरनाथ की यात्रा पर जा रहा है, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता, कौन आ रहा है कौन नहीं आना, जिसको आना हो आएंगे। और दूसरी बात है, यात्री कभी अधिक लोड सामान का अपने साथ नहीं लेता, बहुत जवाबदारियों का लोड लेकर के नहीं चलो। कहते हैं एक व्यक्ति बैलगाड़ी से जा रहा था, सामने एक भाई को देखा, बेचारा बहुत बुजुर्ग था, थका हुआ था, उसके ऊपर बहुत बड़ी गठरी रखी थी, तो उसको रहम आ गया, उसने कहा बाबूजी आओ बैलगाड़ी पर बैठो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो बैलगाड़ी पर तो बैठ गया, लेकिन जो सिर पर गठरी रखी थी वो अपने सिर पर ही रखा रहा। कहता भाई आप बैलगाड़ी पर बैठे हो तो गठरी भी रख दो। कहता नहीं, गठरी रखूंगा तो आपके बैल थक जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? गठरी उसके सिर पर है, बैठा है बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी चल रही है लेकिन गठरी नहीं उतार रहा है। हम सब रूहानी यात्री हैं, यात्रा कर रहे हैं, बाबा अपनी गोदी में बिठा के हमें ले जा रहा है और सिर पर गठरी रखी है, मेरा परिवार, मेरी जवाबदारी, मेरा ये। अरे गठरी क्यों नहीं रख रहे हो, तुम बैठे हो, तुम यात्रा पर हो और जवाबदारियों की गठरी बाबा को नहीं दे सकते, भारी हो जाएगा बाबा क्या? इसलिए सब बाबा को जवाबदारी दो, बाबा ये सब आपका, हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ। बहुत सहज पुरुषार्थ है, सहज मंजिल है। और बाबा अपने बच्चों को मेहनत करते हुए देखना नहीं चाहता। कई बार बाबा कहता है बच्चे जब मेहनत करते हैं तो मुझे बहुत रहम आता है, मेरे बच्चे और मेहनत कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। इसलिए आप सब मेहनत मुक्त बन करके, एक बाबा दूसरा न कोई, एक व्रता हो करके रहो। एक की लगन में मगन रहो। सबके साथ संबंध है, लेकिन हम सब संबंध निभाते हुए भी न्यारे हैं, प्यारे हैं। परिवार में होते भी पार हैं। तो आप सब ऐसे प्रवृत्ति में रहो, लेकिन निवृत्ति में रह करके, न्यारे प्यारे रह करके अपने जीवन का उदाहरण लोगों के आगे रखो। आपको देख करके लोग ज्ञान में चलने की हिम्मत रख सकें। ऐसे न कहें ये ब्रह्मा कुमारी में गया तो बिगड़ गया, ये बाबा की बदनामी है। लेकिन आपको देख करके लोग कहें यहाँ जाने से ऐसी जीवन बन सकती है, इतने महान बन सकते हैं। तो इस सेवा का बड़ा अच्छा चांस है, साधन है। इन्हीं शब्दों के साथ अभी हम सब चलो बाबा के पास उड़ करके अव्यक्त वतन की, मूल वतन की सैर करो। हम सबको बाबा ने बहुत अच्छी गुफा दी है, भ्रकुटी की गुफा में एक चमकता हुआ मैं आत्मा सितारा हूं। बहुत स्नेह से पहले अपने स्वस्वरूप का दर्शन करो, कर्मेंद्रियों से न्यारा बनाकर एक लाइट माइट संपन्न, एक चमकता हुआ हीरा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान है। और बाबा जो परम शक्ति सर्वशक्तिवान परम पवित्र है, अभी हम सबका उनके साथ इतना समीप का निकट संबंध है। जो बाबा खुद कहते हैं, बच्चे तुम सच्चे दिल से मेरा बाबा कहो, मैं तुम्हारे समीप आ जाऊंगा। कह के तो देखो, तो सभी बहुत दिल से बहुत प्यार से बाबा को देखो। वो चमकती हुई ज्योति परम पवित्र सर्वशक्तिवान हम सबके अति प्रिय आत्माओं के पिता, उनका आवाहन करो, मेरे बाबा, मीठे बाबा, इस सभा में आ जाओ और मुझे अपने संग का, अपनी शक्तियों का अनुभव कराओ। बाबा को इतने समीप अपने साथ बिठा लो इस भ्रकुटी आसन पर, मैं और मेरा बाबा दोनों कंबाइंड हैं। उनके संग में रंगी हुई मैं आत्मा भी परम पवित्र मास्टर शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर बन गई। भ्रकुटी आसन पर चमकती हुई मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड हूं। उनकी शक्तियों का अनुभव करो, उनके सच्चे प्यार दुलार का अनुभव करो। सर्वशक्तियों से संपन्न मैं भरपूर आत्मा बाबा के समान डबल लाइट इस आकार सृष्टि से उड़ते इस नील गगन को पार करते अपने लाइट के वतन में लाइट की ड्रेस में फरिश्तों के मालिक बाप दादा के सन्मुख विराजमान हो सभी अपने आत्मिक स्वरूप के साथ साथ सूक्ष्म लाइट के स्वरूप का भी अनुभव करो। ये प्रकाशमय काया मेरा सूक्ष्म शरीर बाप दादा की किरणों से चमक रहा है। यह व्यक्त वतन बाबा के मस्तक से निकलती हुई सकाश मुझ आत्मा को पावन बना रही है। ये सकाश एक करंट का काम कर रही है। शरीरी स्थिति में बैठकर बाबा की करंट लो। उनके समान बनकर फरिश्ते ड्रेस से विश्व की सेवा पर उपस्थित हो जाओ। बाबा ने अपने साथ एक ऊंची लाइट की पहाड़ी पर खड़ा कर दिया है। बच्चे चारों ओर कितनी आत्माएं दुखी और अशांत है पुकार रही है। आप उनकी पुकार सुनो उपकार करो। अपने वरदानी हाथ से पवित्र प्रकंपन से सर्वात्माओं को प्रकृति के पांचों तत्वों को सामने देखते हुए सर्च लाइट दो। सब आत्माएं मुक्त हो जाए। प्रकृति पावन सुखदायी बन जाए। शुभ भावना की किरणें इस पूरे ग्लोब पर सर्च लाइट के रूप से जा रही हैं। सर्वात्माएं सहारे का अनुभव कर रही हैं। फरिश्ते रूप से अपनी पवित्र मनसा द्वारा सबको शांति और शक्ति का दान दो। सभी अपने पूज्य स्वरूप में इष्ट देव और इष्ट देवी के रूप में अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए चैतन्य शक्ति स्वरूप में बैठो। अनेक भक्तों की लंबी लंबी कतार सामने आ रही है। एक पल के दर्शन से लोग प्रसन्न हो रहे हैं। सबकी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। संगम युग पर भगवान ने इतना हम बच्चों को दिया है, संपन्न बनाया है। अपने संपन्न स्वरूप से अपने भक्तों को दान दो, वरदान दो, नजर से निहाल करने की सेवा को। सभी अपने पूर्व स्वरूप में स्थित हो जाओ। वृक्ष पति बाप आदि पिता आदि माता के साथ इस कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर मैं तपस्वी आत्मा पूरे वृक्ष को शक्ति प्रदान कर रही हूँ। इस वृक्ष में जो भी आत्माएं हैं सब एक ही तने से निकली हुई आत्माएं हैं, सबका भला हो, सब सुख पाए, अपनी पूरी वंशावली को पूरे वृक्ष को अपने पूर्व स्वरूप में स्थित होकर शक्ति दो, स्नेह दो, अपनेपन की अनुभूति।
तेरी पालना ओ बाबा पावन हमें बनाए, उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए। तेरी पालना ओ बाबा ओम शांति। हम सब के बीच में दिव्य मूर्ति, अलौकिकता की प्रतिकृति, रूहानियत का अवतार आदरणीय मुन्नी दीदी जी पधार चुके हैं। हम सब जोरदार तालियों से दीदी जी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दीदी जी पधारिए, बाबा के यज्ञ की रूहानी रसम जिन्होंने आज दिन तक भी दादियों के अंग संग रह करके ऐसे ही बनाए रखी हैं, इतने लाखों भाइयों और बहनों को साल भर अपने दिव्य हस्तों से सौगात देते रहते हैं। आज भी दीदी हम सबको बाबा के यज्ञ की रूहानी यादगार देने के लिए पधारे हैं। फिर से दीदी जी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। बाबा के यज्ञ की आप वो महान विभूति हैं कि जिनके द्वारा यज्ञ के सभी भवन, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, शांति वन, ग्लोबल, सब जगह की संपूर्ण सजावट और न सिर्फ भवनों की लेकिन समर्पित भाइयों और बहनों की भी पूर्ण देखभाल और संभाल में जो सदा तत्पर हैं, ऐसी हमारी दीदी जी यज्ञ की सह मुख्य प्रशासिका आदरणीय दीदी जी का हम फिर से दिव्य तालियों से स्वागत करते हैं। अभी 3 मिनट शक्तिशाली दृष्टि लेंगे। सब स्थिर, शांत और एकाग्र होके बैठ जाएं। फिर आदरणीय दीदी जी हम सभी को दिव्य प्रेरणाएं देंगे। पहले हम सब बाबा को याद करेंगे।